सुहास जगत गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर साथ कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरयो रामदास गुरु हर साथ कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरयो। शबर चमन तक दिमालक सिंहासन ते सुभायमान शक्ता अवतार जाहर पीर प्रताप गुरु शब्द गुरु ज्ञान गुरु जुगो जुग अटल गुरु तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हें तुद नो तान कहया तिने जाम नेर ना आया गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर ओहो आद जुगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर गुर मेरी पूजा गुर गोविंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत ऐसे परम ब्रह्म भगवंत स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मैं सिर झुका के नमस्कार करके पावन दरबार में बैठ के रस नरे कीर्तन शर्वन करके आपा प्रचार कर दिया जीव जुक्त प्राप्त कर दिया जिंदगी अवगन ते विकारा तो रहत करके गुरु के शब्द विच अपना आपा समोह के जिंदगी बतीत करने का यत्न कर दिया जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नू बड़े ही अदब नाल हाथ जोड़ सानिमल प्रेम पूर्वक गुरफते दी सांझ दे अर्ज है जी सारे आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी के अज आगमन पूर्व भी हैं लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब जी दियां ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਦੋ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ, ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਦੀ ਤਰਾਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰ ਅਤੇ ਭੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਵਨ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਪਏ ਮਨ ਤਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ਾਂਤ।
ਜਲਨ ਬੁਝ ਗਈ, ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਤਪ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਕੋਟੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਹਾ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੜਾਹਾ ਹੀ ਤਪਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਚਾਰ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਵਹਿ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਤੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, तीन सरवर तिस सरवर विच तिस सरोवर विच पहिले निवासा साडा निवास हो गया। जिस सरोवर विच पानी नहीं, पानी दी थां ते अग है। पानी पावक ने किया, पावक अग है जिस सरोवर विच। ऐसे संसार दे औगुणा विकारा अशांत अवस्था वाले सरोवर विच जिंदगी जो बीत रही सी, गुरु ने नजर की, तप्त कड़ाहा बुझ गया। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, गुर शीतल नाम दियो। तो अज दे पावन उपदेश विच सतगुरु बख्शिश करते हैं, जल बुझी शीतल भय, मन तन उपजी शांत, मन भी शांत, तन भी शांत। कोई नहीं तपा सकता जिस अंदर नाम की शांति कभी है, जिस अंदर हृदय की वाहिगुरु बख्शिश वाली ठान अंदर पै गई है। रबी बंदा घर बार त्याग के साधु बन गया, सचमुच मन साध्या गया, अंदर शांति इसते आ गई। सर्दी के दिन होंगे तो अग बाल लेता, अग बालद्या बालद्या सेकद्या सेकद्या अक्सर ही बुझ जाती, इतने न सूरज निकल आता, अग की लोड़ ना महसूस होंगी। बुझी हुई अग की ढेरी सामने है, लंघ दे एक बंदे देखिया, देखा तो सही बाबे दे अंदर शांति किन्नी है। पास ही करछा पिया सी, करछा भरिया उस अग वाली बुझी हुई राख की ढेरी विच, ते उपर उतां सुट के कहिंदा भी देखा बाबा इस विच कोई अग की चंग्याड़ी है कि नहीं। ओ उपर नूं सुटिया, कुछ राख थले डिग पई, कुछ उड़ के बाबे दे पै गई, ते बाबा शांत बैठा चुप खामोश। दोबारा फिर करछा भरिया, फिर उपर सुटिया, फिर कुछ राख थले डिग पई, कुछ उड़ के बाबे दे पै गई, ते बाबा दूजी वारी भी बिल्कुल शांत ते खामोश। कहन लगा बाबा अग नहीं हैगी इस विच, बाबे सिर हिलाया नहीं। तीसरी वारी जो फिर करछा भरिया, फिर उपर उतां सुटिया भी देखा कोई अग की चंग्याड़ी चमक के थले डिगदी। अंदर यह ख्याल सी कि राख उड के बाबे की पैगी गुस्से भरेगा। जो तीजी वारी भी वह महापुरख शांत बैठे रहे, तो उसनू हुण महापुरखा ने बड़े छोटे जे दो शब्दों में गल समझाई। कहन लगे जेड़ी अग तू लभदा है, वह अग ना इस बाहर की ढेरी विच ना हिरदे की ढेरी विच है, बुझ चुकी है अग। ध्यान च रखियो, मन जदों शांत हो जाता उत्थे कोई जलन नहीं रहिंदी। क्रोध भी अग है, दूसरे नू वेख के सड़ना जिन्हूं प्राई तात कहिंदे ने, इह भी इक अग है। कोई अमीर देख के, कोई अपने तो अगां वधिया बंदा देख के, किसी की चंगी शोभा देख के कई बारी किसी बंदे तो बर्दाश्त नहीं हुंदी। इसकी इतनी शोभा क्यों है, यह क्यों नहीं भुखा मरता, यह क्यों नहीं दुखी। इस नू कहिंदे ने प्राई तात, अंदर साड़ा मुक जाता है। वह तो दूजिया का भला लोचता है भी सारे रच के रोटी खान। उसके अंदरों के हिरदे चो यह आवाज निकलती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। यह मन शांत वालिया की निशानी है। वह मुखों कहते हैं कि सभे जी संभाल अपनी नेर कर, अन्न पानी मुझ उपाए दुख दालत भन कर। हे मेरे मालका सारे जी संसार के सुखी वसन ते रच के रोटी खान। पराई तात वाली जलन अंदरों बुझ जाती है, क्रोध की अग अंदरों बुझ जाती है। जलन बुझी शीतल भय, मन तन उपजी शांत। ए ना होवे के थले बाली अग ते पानी की तरह तप गया ते उबलन लग पिया, चुकया पानी रखिया फ्रिज विच ते ठंडा हो गया। ऐ पानी तेरा आपू ते कुछ भी ना होया, ना अग बाली ते उबलन लग पिया, फ्रिज विच रखा ते ठंडा बर्फ बन गया। नहीं अपना जीवन चाहिदा है, कोई बाहरों आके कितनी तपश ते सारा पैदा करना चाहे, मन बिल्कुल शांत खामोश। मन तन उपजी शांत, मन विच भी शांति, तन विच भी शांति। जलन बुझी शीतल भय, मन तन उपजी शांत। हजूर अगली पंक्ति विच फरमान करदे हन जी,
नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत।
पूरन परमेश्वर जी का मिलन हो गया, ते जेरी दुतिया प्रांति सी भी ए होर है कोई। पवंदरू गल मुक गई, इको रब ही रब है सब थां ते, इको परमेश्वर भी सब थां ते परिपूर्ण है। प्रभु मिल जान ते तां दूजी भ्रांति मुकदी है। जितनी देर मिलन नहीं हुंदा उतनी देर कहिंदा दी ए मैं होर ते तू होर। ते अक्सर बंदे ये कहिंदे ने भी मैं साध ते तू चोर। ध्यान च रखियो अपने आप नूं कहना भी मैं बड़ा चंगा दूजे ते रुड़ गए सारे पास मर गए। मेरे वर्गा चंगा कौन बंदा। और शेख शादी नाल शिगिरद पहले दिन गया सी ना मसीते नमाज पढ़न ते जदों वापस आए ते लोग सुते पए सी। सुते पए लोगों नूं देख के कहन लगा उस्ताद जी आ जिहड़े लोग अजे तक सुते पए ने सारे काफरे दोज़ख नूं जाणगे ना अजे तक सुते पए ने। शेख शादी जी उत्थे रुक गए कहन लगा मैनू यह नहीं पता भी ये जिहड़े लोग सुते पए ने ये दोज़ख नूं जाणगे कि बहिश्त नूं जाणगे। पर मेरी नमाज तू बड़ी खराब करके रख दित्ती है मैनू मसीते दोबारा नमाज पढ़न जरूर जाना पएगा। अज पहले दिन ते नमाज पढ़न आया ते सारे ने दोज़ख दियां टिकटां कट कट के दे जाने दोज़ख नूं जाणगे ते तैनू लगदा भी मैं बहिश्त जावांगा। जदों अपने आप नूं चंगा कहना ते दूसरे वास्ते इहो जिही भावना रखना ये समझ लेना अजे रब दे मिलन दी गल नहीं अजे ते द्वैत विच जींदा है दो विच जींदा है। जे सब थां ते इक्को ही परमात्मा है ये अंदर ज्ञान बन जाए इंज प्रभु दा मिलन हो जाए ते फिर दूजी भ्रांति दूसरे दी होंद दी गल वो मुक जांदी है। उते परमात्मा आप ही तरह तरह दे रूप धार के बैठा है हलवाई बनांदा है खिडौने कोई हाथी कोई घोड़ा कोई ऊठ कोई बिल्ला तरह तरह दियां शकलां खंड दे खिडौनियां दियां घर के रख दिंदा है। बच्चे आंदे ने वह कहिंदे मैं दो हाथी खरीदने ने एक मैं घोड़ा खरीदना है। सियाणा आंदा ते कहिंदा तोल दे किलो खिडौने उस वास्ते सारी दी सारी खंड है खरीदता बच्चा भी खंड है। पर खिडौनियां दी भावना नाल खिडौने लैके घर आउंदिया लिफाफा हथों लिखदा है ते खिडौने टुट जांदे ने बच्चा रोंदा कि मेरा हाथी टुट गया मेरे घोड़े की लत टुट गई। रोंदे बच्चे नूं बाप भावें चुप करांदा है भी टुटा भी खिडौना मिठा इसकी टुटी लत विच भी उतनी मिठास। वह कहिंदा नहीं ये टुट गए मैं नहीं लैने। वापस हलवाई कोल लै जांदा है मालक हलवाई देखदा है बाप कहिंदा है कि यह टुट गए खिडौने ये तू रख लै ते सानू बदल के चंगे दे दे। काका रोंदा पिया है हलवाई कहिंदा मैनूं कोई फिक्र फर्क नहीं पैना मैं ते फिर सारिआं दी खंड बना के दोबारा फिर बना लैने ने तुसीं होर लै जाओ। गल जरा ध्यान च रखियो दुनिया विच तरह तरह की रचना नजर आउंदी है कोई जमदा है कोई मरदा है कोई पशु बनता कोई पंछी ते कोई मनुख बनता है कोई जन्म दे दे कोई मर जावे रब नूं कोई फर्क नहीं पैंदा वह मरिआं नूं फिर नवे घर के फिर संसार ते भेज दिंदा है ही ते आप ही आप ना। ते हजूर कहिंदे ने ओ परमात्मा जो सब थां ते आप ही आप है वह जदों अंदर सुरत विच मिलाप की अवस्था विच आ जांदा है फिर द्वितीया भ्रांति दूसरा के ए होर है ए होर है ए अंदरों ख्याल मुक जांदा है। वह कहिंदा है यह सब गोबिंद की रचना है यह सब थां दे उत्ते इको मेरा वाहिगुरु निरंकार ही आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। वो मेरा साहब आप ही सब थां ते बस रहा है उस बिना दूजा होर कोई नहीं है जी।
साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर।
परमात्मा संसार उत्ते साध जिन्हां नूं बंदगी वालिआं नूं या जिवें धन गुरु नानक पातशाह जी नूं आप संसार उत्ते भेजदा है अते उन्हां भेजे हुए अवतारी पुरशां दा इक संदेश हुंदा है कि हम तुम ते नाही दूर रब साडे ते तुहाडे तों दूर नहीं है वो सब दे नजदीक है। हम ते तुम आपस विच दूर हो सकते हैं लेकिन रब हम तुम तो दूर नहीं है। जे कोई ठाकुर है वाहिगुरु उसका कोई सेवक है ते ठाकर ते सेवक विच भेद नहीं रह जाता क्योंकि जान लिया मिलन हो गया एक मिकता बन गई शरीरक तौर ते दो नजर आते ने। पर भगत नूं पुछ के देखो तू जरा दस कि तेरा मालक तेरा साहब तेरा वाहिगुरु ते तू होर है रब होर है उन्हां दा जवाब आवेगा नहीं तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तेरे ते मेरे विच की फर्क कोई फर्क नहीं है। वो ते रब नूं भी कहंदे ने हे रब जी मेरे नाल शर्त ला के देख लो तुसी हो ठाकर ते मैं हां जन पर ठाकर भी ते तां ही हो ना जे जन हां ते जे जन ना होवां सेवक ना होवां ते तुहानूं ठाकर कौन आखे जे तुहाडे करके मैं बनिया हां तुहाडे करके जन होंद विच आया है ते जन करके ते ठाकर होंद विच आया नहीं ते तुहानूं ठाकर किसे ने कहना सी बदहो की ना होड़ माहो मोस्यो बदहो की ना होड़ मेरे नाल शर्त ला के देख लो बदहो की ना होड़ माधो मोस्यो ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर खेल परयो है तोस्यो आपन देओ देवता भी आप मंदिर भी आप आपन देओ देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुनन को दूजा आख दईए भी ये जल है ये तरंग है ये लहर है ये बुदबुदा है की फर्क पैना सी ते बोल ही दे लेना पानी नूं की फर्क पैना पानी च तरंग बुदबुदे बन जाण कोई बयानबाजी करी जावे पानी ते पानी है ना कहन सुनन को दूजा आप है गावे आप है नाचे आप बजावे तूरा कह नाम दो तू मेरो ठाकर जन पूरा तू पूरा मैं पूरा ते तू पूरा पर पूरा भी ते ताई ना जे तू पूरा है ते तेरे करके ही ते मैं बने उस अवस्था दे विच उस नूं फिर अंदरों भेद मुक जांदा है अते ए जानदा है कि जो परमात्मा साडे तुहाडे तो दूर नहीं साध पठाए आप हर कोई अवसर बन आंदा है धन गुरु हर ऐसा है पातशाह जी नूं वाहिगुरु जी आप संसार उत्ते भेजदे ने धन गुरु हर गोबिंद साहिब पातशाह जी दे पोतरे हन गुरु हर राय साहिब जी शरीरक संबंध विचों वड्डे पुत्र सन गुरदित्ता जी धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे वड्डे पुत्र सन गुरदित्ता जी ते गुरदित्ता दे सपुत्र सन गुरु हर राय साहिब जी जन्म वेले ही जदो शरीरक आवना बनता है इतने मैं एक अर्ज कर दिया शरीर का जन्म है जोत का नहीं गुरु जोत है उसका जन्म नहीं वो तो इको जोत है जो गुरु नानक दी उ जामे बदल बदल गुरु हर गोबिंद साहब उ जोत गुरु हर राय साहब जन्म शरीर के होंदया लोगों की नजर में कुछ होर नजर आता है पर गुरु हर गोबिंद साहब महाराज आमदे ने हाथ विच लेंदे ने ते कहंदे ने इह ते हरी रूप है नाम ही रख दिता हर राय हरी राजा जी हर राय जी ऐसी अवस्था कि गुरु दे हुक्म दी तमील ते गुरु विच प्यार कितना मैं दो दिन पहला भी ये इतिहासक गाथा दा जरा कु नुक्ता छोया सी वी चले जांदियां बड़ा खुला चोला पा के ते बड़ी विस्माद अवस्था विच बाग विचों टहलद्या टहलद्या चोले दी कली दे नाल इक कली दे पौधे नाल छोना हुंदा ते कली टुट के थले डिग पैंदी है खलो जांदे ने कली हाथ विच फड़दे ने गुरु हर गोबिंद साहिब कहंदे ने बेटा जे वड्डे चोले पहनने होवन ते चोलियां नूं संभाल के चलीदा है ए सिद्धांत दित्ता साने भी तुहाडा चोला इतना खुला ना होवे कि राहे जांदियां फुल टुट टुट के डिगदे रहन तुहाडी जिंदगी दा फैलाओ इतना ना होवे कि तुसी अपने जीवन दी मौज मस्ती करो ते कईयां दे दिल टुटदे जान सारी जिंदगी चोले दे कली नूं ते संभालिया ध्यान च रखियो पर गुरु हर राय साहिब पातशाह ज्यों गद्दी ते सुभाए मान हुंदे ने तिन्हां ने जंगली जानवरां नूं पकड़ के लै आउणा कोई भुखे ने किसे दी संभाल नहीं किते हो रही उन्हां जानवरां नूं पकड़ के लै आउणा ते बहुत सुंदर जानवरां दे घर उन्हां ने बना के उन्हां विच जानवरां नूं रखना जो कि चिड़िया घर दी जो उपज होई
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ, ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗਿੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਅਗਾਂਹ ਅਗਾਂਹ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਕੂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਤੇ ਗੁਲੇਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗੜਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਾਕੂ ਲਾਂਗੜੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਮਰਨ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਊਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਪਤਮ ਮਹਿਲ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਪਤਮ ਮਹਿਲ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਮੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਮੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਅਜਾਤ ਵਸਤੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਜਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਾਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਜਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਬੋਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਪ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਜਾਪ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਪ ਵਸਤੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰਤ, ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं तो जी बाहर भटकता रहता है। ध्यान च रखियो, घर मिल जाए, कोठड़ी मिल जाए, असी विश्राम करते हाँ, जीव नूं जदों सुरत शुद्ध मिल जाए उत्थे जीव का भी निवास हो जाता है। जी की कोठड़ी है शुद्ध सुरत, ते मन का मेर है गुरु की मत, मन की चोटी, मन का सिरमोर टिकाओ, मन का सुमेर वो है गुरु के शब्द नाल, मत का गुर मत बन जाना। धन गुरु हरराय साहिब पातशाह जी ने बड़ा अगम्य ज्ञान दिता। जो एक सिख ने अगला सवाल एक होर किया बड़े कमाल दे अध्यात्मवाद विच, चौथा पद की है? महाराज तीन गुणा की गल ते सुनदे हां, तुरिया पद चौथा पद किस नूं कहिंदे ने? श्री असीं पढ़दे हां रजगुण तम गुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीना तीन ही परम पद पाए। वो चौथा पद किसनों कहते हैं? ते तीन पद जो ने जो पहलियां तीन अवस्था रजो गुण तमो गुण ते सतो गुण वो की ने? ते धन गुरु हरराय साहिब पातशाह कहन लगे तमो गुण है हाड़ दी तरह, तमो गुण है हाड़ दी तरह जिवें हाड़ दा महीना, रजो गुण है स्याल।